डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 27 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र 27 बुद्धि भजन शैली भजन 19 है। पिछले व्याख्यान में हमने शैली का परिचय दिया और मूल रूप से यह भजनों से संबंधित है जो हमें सकारात्मक और सैद्धांतिक दोनों तरह के भजन देते हैं, जो हमें दुष्टों की समृद्धि से ईर्ष्या न करने की चेतावनी देते हैं। और फिर हम भजन देखने लगे। हमने पहले के व्याख्यानों में भजन 1 में ज्ञान और टोरा को एक साथ रखा था, क्योंकि टोरा भजन भी चेतावनी और निर्देश हैं। और इसलिए हमने भजन 1 के बारे में पहला व्याख्यान देखा, जो एक टोरा भजन था। भजन 49 और भजन 73 जैसे सैद्धांतिक भजनों को देखा। और इसलिए मैंने सोचा कि हम भजन 19 की तरह एक और भजन करेंगे, जो एक टोरा भजन और एक निर्देशात्मक भजन है। और हमने इसकी मूल संरचना देखी कि यह सृष्टि में ईश्वर की स्तुति करता है और सामान्य रहस्योद्घाटन करता है, और यह टोरा और विशेष रहस्योद्घाटन के लिए ईश्वर की स्तुति करता है। और मुझे लगता है कि इसके बीच एक रिश्ता है। यह केवल दो प्रकार के रहस्योद्घाटन की प्रशंसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुद्दा यह है कि सामान्य रहस्योद्घाटन में अपने ज्ञान के कारण वह पवित्र शास्त्र में कुछ नैतिक रहस्योद्घाटन देने में सक्षम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह केवल प्रशंसा के दो पहलू हैं। मुझे लगता है कि वे ज्ञान संबंधी सोच में काफी एकीकृत हैं। मैंने इसे अय्यूब 28 और नीतिवचन अध्याय 30 से प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जो इसे एक साथ रखता है। और यह वैसी ही बात होगी कि परमेश्वर सारे स्वर्ग को जानता है और इसलिए परमेश्वर का भय मानता है, जैसा कि हमने अय्यूब में देखा, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। इसलिए वह जो कहता है वह प्रभु का भय बनाए रखने के लिए है। और यहाँ, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है, यहाँ फिर से हम पाते हैं कि प्रभु का भय शुद्ध है, हमेशा के लिए स्थायी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह ज्ञान चिंतक का तर्क है। अब हम इसे और अधिक विस्तार से देखना और व्याख्या करना चाहते हैं, स्तोत्र को उजागर करना चाहते हैं। और यह पृष्ठ 331 पर है। और हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं, ईश्वर का ज्ञान या उसकी सर्वज्ञता जो सृष्टि में प्रदर्शित होती है। वास्तव में वह श्लोक 1 से 6 तक होना चाहिए, केवल 1 से 4 तक श्लोक नहीं, बल्कि यह परमेश्वर का ज्ञान है। और मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वह यह है कि मैं भजन को व्याख्यात्मक रूप से देख रहा हूँ। और फिर चूंकि हमारे पास युगांत शास्त्रीय मसीहाई दृष्टिकोण था, इसलिए मैं इसे नए नियम के प्रकाश में भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मैं इसे देख रहा हूँ और आज व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए इसका क्या मतलब है। इसलिए मैंने इसे ऐतिहासिक व्याख्यात्मक व्याख्या में विभाजित किया। तो फिर इसका मसीह से क्या संबंध है, और फिर हम इसे स्वयं पर लागू करके कैसे समझते हैं। सबसे पहले फिर हमारे पास श्लोक 1 से 4 में है कि आकाश घोषणा करता है, 4b वास्तव में आकाश ईश्वर की महिमा की घोषणा करता है और ईश्वर की महिमा उसका व्यापक ज्ञान है। यहाँ 2 इकाइयाँ हैं। दरअसल श्लोक में भगवान के ज्ञान में वास्तव में 2 चरण हैं। पहला, ईश्वर का आकाश ईश्वर की महिमा या उसके ज्ञान की घोषणा करता है। और फिर वह श्लोक 4 से श्लोक 6 के अंतिम भाग में विशेष रूप से पुत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। भगवान की बात करते हुए मुझे यहाँ अपने सामने भजन लाने दीजिए। आकाश के बारे में उस पहले चरण में ईश्वर के ज्ञान की घोषणा की गई है और यही उसे महिमा देता है कि वह श्लोक 1 और 2 में ईश्वर के ज्ञान की आकाश की प्रशंसा की अस्थायी सार्वभौमिकता के बारे में बोलता है। आप श्लोक 2 में देख सकते हैं, दिन से दिन तक वाणी प्रकट होती है और रात से रात तक ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए दिन और रात हमेशा हमेशा वह अपनी महिमा और अपना ज्ञान प्रकट कर रहा है। श्लोक चार में वह अंतरिक्ष में अपनी सार्वभौमिकता, आकाश की प्रशंसा की अपनी स्थानिक सार्वभौमिकता के बारे में बात करता है। वह कहता है, उनकी वाणी सारी पृथ्वी पर फैलती है और उनके शब्द जगत की छोर तक और उनके शब्द जगत के छोर तक जाते हैं। अथ श्लोक एक और तीन घोषणावाचक क्रिया है। इसलिए उसके पास स्वर्ग है जो परमेश्वर की महिमा की घोषणा करता है। ऊपर का आकाश उसकी करतूत का बखान करता है। और फिर श्लोक तीन वह विस्तार से बताते हैं, कोई भाषण नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। अत वे विषम छंदों में संचार की बात करते हैं। और फिर सम छंदों में वह समय और स्थान में उस रहस्योद्घाटन की सार्वभौमिकता के बारे में बात कर रहा है। दूसरे चरण में वह सूर्य पर ध्यान केंद्रित करता है जो फिर से अंतरिक्ष में व्यापक है। निस्संदेह सूर्य दैनिक और अंतरिक्ष में है। श्लोक छह में यह पृथ्वी के छोर से उठ रहा है और इसके अंत तक परिक्रमा कर रहा है और इसलिए यह पूरी चीज देखता है। इसका कोई अंत नहीं है और वह इस मामले में दो रूपकों या उपमाओं का उपयोग करता है। एक तो यह कि वह सूर्य को दूल्हे के रूप में चित्रित करता है और उपमा से मुझे पता चलता है कि यह सूरज की ताजगी, नवीनता, सुंदरता, शक्ति और खुशी की बात करता है। और दूसरा वह एक मजबूत आदमी है और जैसा कि मैं इसे देखता हूं वह एक रेसर है जो खुशी के साथ अपना कोर्स चलाता है और इसलिए वह दोनों एक धावक हैं क्योंकि कोई भी सूरज जितनी तेज दौड़ नहीं सकता और वह लंबी दूरी का धावक है। कोई भी सूर्य जितनी दूर तक नहीं दौड़ सकता। तो ये दो उपमाएं उनके उत्साह की बात करती हैं और उनकी ताकत और सार्वभौमिकता की बात करती हैं। जहां तक यह मसीह को संदर्भित करता है, जैसा कि मैं इसके बारे में सोचता हूं कि जॉन एक में मसीह वह शब्द है जिसने सृष्टि को जन्म दिया, कि वह सृष्टि का एजेंट है जिसके माध्यम से यह पूरा हुआ है। और नैतिक बात मुझे लगता है कि मैं यहाँ वह लाऊंगा जो हमने भजन आठ में किया था कि यह रहस्योद्घाटन इतना शानदार है कि आपके पास निर्माता को जवाब न देने का कोई बहाना नहीं है। लेकिन यह कहना पर्याप्त है, मुझे जोसेफ एडिसन का भजन 19 का व्याख्या पसंद है, यद्यपि गंभीर मौन में सभी लोग अंधेरे स्थलीय गेंद के चारों ओर घूमते हैं, हालांकि उनकी दीप्तिमान गहनों के बीच कोई वास्तविक आवाज या ध्वनि नहीं मिलती, कारण के कान में वे सभी आनंदित होते हैं और एक गौरवशाली आवाज निकालते हैं। और मुझे लगता है कि मानव जाति कांट की तरह तुरंत उससे ईश्वर के बारे में बात करती थी। यद्यपि कोई आवाज नहीं है, तर्क के कानों तक अभी भी कोई आवाज नहीं है, हम इसे सुनते हैं और हम इसे देखते हैं। ओह, मुझे यह भी जोड़ना चाहिए था, हालांकि गंभीर मौन में सभी लोग अंधेरे स्थलीय गेंद के चारों ओर घूमते हैं, हालांकि उनकी दीप्तिमान गहनों के बीच कोई वास्तविक आवाज या ध्वनि नहीं मिलती, कारण के कान में वे सभी आनंदित होते हैं और चमकते हुए हमेशा के लिए गाते हुए एक शानदार आवाज निकालते हैं। जिस हाथ ने हमें बनाया वह दिव्य है। सृष्टि में ईश्वर की महिमा और उसके ज्ञान के बारे में बात करने के बाद अब हम टोरा की नैतिक उत्कृष्टता पर आते हैं। वह मूल रूप से टोरा की शब्दावली को लगभग समाप्त कर देता है। मैंने इसे दो भागों में विभाजित किया, टोरा का सार और टोरा का इना। उसका सार उसकी नैतिक पूर्णता है। यह पूर्ण है, यह दोषरहित है, यह धर्मसम्मत है, यह शाश्वत है। और फिर हम इसके पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं और मूलतः यह ज्ञान का पुरस्कार है जो स्वयं जीवन है। लेकिन ध्यान दें कि वह इसका वर्णन इसकी पूर्णता में, इसकी सात पूर्णताओं में कैसे करता है। वह कहते हैं, सबसे पहले भगवान का कानून परिपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि यह पूर्ण है। और मुझे स्पर्जन की टिप्पणियां पसंद हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जोड़ना अपराध है, इसमें बदलाव करना देशद्रोह है और इससे लेना घोर अपराध है। इसके बारे में यह एक दिलचस्प उद्धरण है। वह स्पर्जन है, व्याख्यात्मक उपदेश के लिए एक अच्छा सबक। क्षमा, व्याख्यात्मक उपदेश के लिए एक अच्छा सबक। हाँ, और मुझे वह पसंद है। हाँ, उत्तम। जब वह कहता है कि यह निश्चित है, तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह विश्वसनीय है। और मेरा सुझाव है कि यह पूरी तरह से सुनिश्चित है, पूरी तरह से विश्वसनीय है। प्रभु की गवाही निश्चित है, क्योंकि यह व्यापक ज्ञान पर आधारित है। यह सार्वभौमिक ज्ञान पर आधारित है। तब वह कहता है कि यह तो सीधा है। प्रभु की आज्ञा सीधी है। हमने पहले ही उस पर टिप्पणी कर दी है, जिसका अर्थ है कि यह दोष रहित है। इसमें कोई मोड़ या मोड़ नहीं है। यह बिल्कुल चिकना और सीधा है। यह दोष रहित है। जब वह कहता है कि यह शुद्ध है, तो हिब्रू शब्द का अर्थ है कि इसे तब तक रगड़ा जाता है जब तक यह चमक न जाए। यह उतना ही शुद्ध है, इसलिए यह ज्ञानवर्धक है। यह शुद्ध है। फिर वह कहता है, और उसने कहा, यहोवा की व्यवस्था उत्तम है। यह बिल्कुल सही है। यह पूर्ण है। यह निश्चित है, पूर्णतः विश्वसनीय है। इसमें कोई दोष नहीं है। दरअसल इसे तब तक खंगाला जाता है जब तक यह चमक न जाए। फिर वह कहता है, यह साफ है। इससे उनका मतलब है कि इसमें कोई मिश्रण नहीं है। और क्योंकि इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, यह सदैव बना रहता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे नष्ट कर दे। 9b वह कहते हैं, भगवान के नियम सत्य हैं, जिसका अर्थ है कि वे दृढ़ हैं, वे स्थिर हैं। मानवीय निर्णयों के विपरीत उन्हें पलटा नहीं जा सकता, ताकि उसका कानून अपरिवर्तनीय हो। यह सच है, इसे बदला नहीं जा सकता, और यह धर्मसम्मत है। यह पूरी तरह से परमेश्वर के चरित्र और उसकी इच्छा के अनुरूप है। वे परमेश्वर के वचन की सात नैतिक उत्कृष्टताएं हैं। फिर इतने सारे लोग इसका प्रचार करने से क्यों डरते हैं? बेशक मुझे लगता है कि इसका कारण यह है, मुझे लगता है, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं और हम वही प्रचार करेंगे जो हम सोचते हैं कि लोग सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम चर्च विकसित करना चाहते हैं और इसलिए हम लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं और हम उन्हें वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है यही कारण हो सकता है। चर्चों को बढ़ाओ, लोगों को नहीं, काफी है। हाँ, मुझे लगता है कि यह सही है। इसे रखने का यह एक अच्छा तरीका है। वह कहते हैं, तोरा का इनाम यह है कि यह आत्मा को पुनर्जीवित करता है। यह भजन 22 की तरह जीवन शक्ति को नवीनीकृत करता है। मेरा सुझाव है कि यह दुखी और निराश लोगों को जीवन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग इस बात के लिए किया जाता है कि ओबेद नाओमी के लिए क्या करेगा। वह आपके जीवन को नवीनीकृत करेगा और बुढ़ापे में आपका भरण पोषण करेगा। तो परमेश्वर का वचन तुम्हें नया कर देगा, तुम्हें तरोताजा कर देगा। मुझे लगता है कि इसीलिए इसे हर सुबह पढ़ना हमारे लिए अच्छा है। यह प्रभु द्वारा सरल को बुद्धिमान बनाने की गवाही है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि ही कौशल है, यह जीवनदायी और सामाजिक कौशल प्रदान करती है। तो यह हमें शाश्वत जीवन जीने का कौशल देता है और यह हो गया। और यहाँ हिब्रू शब्द नीतिवचन जैसा ही है, लेकिन सरल है। नीतिवचन में पेटी नकारात्मक है, वह मूर्ख का हिस्सा है। इस शब्द का मूल अर्थ खुला होना है, और इसलिए मूर्ख हर चीज के लिए खुला है और किसी भी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। भजनों में यह बहुत अलग है। सरल खुला है, वह परमेश्वर के निर्देश के लिए खुला है, वह सीखने के लिए खुला है, वह बढ़ने के लिए खुला है। इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसका सरल अनुवाद करना होगा। यह ऋषि का शब्द है, लेकिन इन दोनों पुस्तकों में इनका उपयोग बहुत अलग अलग तरीकों से किया गया है। इससे हृदय प्रसन्न होता है, और निःसंदेह इसका तात्पर्य सही हृदय से होना है। और मैं कहता हूं कि सभी कलाओं के दो भाग होते हैं। मेरा मानना है कि सभी कलाओं के दो भाग होते हैं। इसमें आकार और रंग के साथ वास्तविक वस्तुनिष्ठ चित्र है, और आप इसमें एक निश्चित कल्पना भी लाते हैं, और इसलिए हर कोई इसे अलग तरह से देखता है। तो आप कला की ओर आएं, यह वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों अनुभव है, और इसलिए वास्तविकता है वस्तुगत वास्तविकता, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं यह आपके दिल पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम उसमें आनंद मनाओगे। यदि तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है तो वह इसमें आनंदित नहीं होगा, आपको इससे नफरत होगी। उदाहरण के लिए मैं मोना लिसा की पेंटिंग के बारे में सोचता हूँ। इसे अब तक निर्मित सबसे महान चित्रों में से एक माना जाता है। मैं दा विंची के अनुसार सोचता हूँ। यदि आप वहां जाते हैं तो वह स्थान देखने वाले लोगों से खचाखच भरा होता है। मोनालिसा की जो बात लोगों को आकर्षित करती है वह है स्टाइल। यह काफी विचित्र है, यह एक पहेली की तरह है। आप इसे कैसे समझते हैं? और लोग इसे अलग तरह से देखते हैं। अब मुझे आशा है कि मैं आपके लिए पेंटिंग को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और हर कोई मोना लिसा के चेहरे पर मुस्कान को समझाने की कोशिश कर रहा है। और इस महिला ने कहा, मुझे पता है कि वह मुस्कान क्या है। यह मेरी छोटी बेटी की मुस्कान है जो बाथटब में पेशाब करती है। तो उस स्थिति में भी उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर वही मुस्कान देखी। वह उस तस्वीर में बिल्कुल अलग कल्पना लेकर आई। और मुझे लगता है, खैर वैसे भी हम में से अधिकांश लोग इसे लाएंगे। फिर यह कहता है कि यह आंखों को रोशनी देता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह साफ और उज्ज्वल है, और आज्ञाएं आंखों को रोशन करती हैं। फिर वह कहता है कि श्लोक 10, वे सोने से भी, यहां तक कि बहुत बढ़िया सोने से भी अधिक वांछनीय हैं। जैसा कि मैंने टिप्पणी की थी जब हम कहावतें कर रहे थे कि सोना मेज पर खाना तो रख सकता है, लेकिन मेज के आसपास संगति नहीं दे सकता। वह सोना आपको घर तो दे सकता है, लेकिन घर नहीं दे सकता। वह सोना एक महिला को आभूषण और उसकी पीठ पर फर दे सकता है, लेकिन यह उसे वह प्यार नहीं दे सकता जो वह वास्तव में चाहती है। तो बुद्धि तुम्हें मकान देगी, मकान भी देगी और मकान भी देगी। यह आपको भोजन से भरी मेज के साथ साथ मेज के चारों ओर संगति भी देगा। यह एक महिला को विलासिता के साथ साथ वह प्यार भी देगा जो वह वास्तव में चाहती है। तो यह दोनों करता है। फिर वह कहता है, यह छत्ते से टपकने से भी अधिक मीठा है। यह एक स्वस्थ स्वाद है। जबकि हमने देखा कि भजन दो में विद्रोहियों ने इसे एक भीषण बंधन के रूप में देखा, तो वह एक संत के रूप में प्रतिक्रिया दे रहा है, जिस तरह से एक संत टोरा और उसके लाभों को देखता है। वह आगे कहता है कि उनके द्वारा आपके सेवक को पाप से बचने की चेतावनी दी जाती है और उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है, जिसमें वह सब भी शामिल है जो हमने अभी पढ़ा है। यह उसे तब ले जाता है जैसा कि आपके सेवक ने चेतावनी दी थी, जो उसे फिर उसकी दो प्रार्थनाओं तक ले जाता है। और उनकी पहली प्रार्थना छिपे हुए पापों के लिए है, दो याचिकाएं। एक याचिका छुपे हुए पापों के लिए है, वह श्लोक 12 में है, और दूसरा ढीठ पुरुषों से बचना है, और मुझे लगता है कि यह श्लोक 13 है। तो पहला छुपे हुए पापों के लिए है, और चूंकि वे छिपे हुए हैं, आप उन्हें कबूल नहीं कर सकते, और फिर भी हम जानते हैं कि हम पाप करते हैं। इसलिए इलेन और मैं हर सुबह की शुरुआत हमारे भगवान की आराधना से करते हैं, और हम भगवान से हमारे सभी पापों को माफ करने के लिए कहते हैं। यदि हम किसी विशिष्ट पाप को जानते हैं, तो उसका नाम बताने और उसका त्याग करने का उत्तरदायित्व हमारा है। लेकिन हम इतने भ्रष्ट हैं कि हम भगवान के खिलाफ पाप करते हैं। मुझे लगता है कि हम लगभग मन, शब्द और कर्म से जो हमने किया है और जो हमने अधूरा छोड़ दिया है, और हमें क्षमा की निरंतर आवश्यकता है। डेविड कह रहे हैं, और इस प्रार्थना का उत्तर दिया गया है कि भगवान हमारे छिपे हुए पापों को माफ कर देते हैं, क्योंकि यह कैनन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए यह डेविड के प्रति ईश्वर की प्रतिक्रिया है, मेरा मानना है, क्योंकि इसे संगीत के निर्देशक के लिए पवित्र शास्त्र के सिद्धांत में रखा गया था कि हम सभी इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं कि ईश्वर हमारे छिपे हुए पापों के साथ साथ हमारे ज्ञात ज्ञात पापों को भी माफ कर देगा। मैं कहता हूँ, चूंकि वे छिपे हुए हैं, हम उन्हें त्याग नहीं सकते और उन्हें भगवान के सामने स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी दूसरी प्रार्थना यह है कि भगवान उन्हें ढीठ लोगों के शासन से रोकें, और हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं यहाँ सुझाव देता हूँ, कोई भी धर्मत्याग के खतरे से मुक्त नहीं है, और मुझे लगता है कि हम इसे तब व्यक्त करते हैं जब हम भजन गाते हैं, भटकने की प्रवृत्ति रखते हैं, भगवान मैं इसे महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि आस्था में बने रहने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। जब वह कहता है तो उसका कारण भी बताता है। अनुवाद में मैं कहा हूँ, अनुवाद को मेरे सामने लाने के लिए मुझे यहाँ विराम दें। वह किस पृष्ठ पर था? 328। हाँ, ठीक है। उनकी दूसरी प्रार्थना, जब उन्होंने भगवान से अपने छिपे हुए पापों को क्षमा करने के लिए कहा, तब वे श्लोक 13 में कहते हैं, अपने दास को भी ढीठ से दूर रखो। और मैंने सुझाव दिया कि कोई भी धर्मत्याग के खतरे से मुक्त नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ यह जोड़ना उचित होगा कि ईश्वर की मदद के बिना हम में से कोई भी शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। धर्मत्यागी के पीछे शैतान और शैतानी ताकते हैं, और हम इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हमें निरंतर ईश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, और उसका कारण यह है कि तब मैं खराई बनाए रखने में निर्दोष और बड़े अपराध से निर्दोष ठहरूंगा। और सवाल यह है कि सबसे बड़ा अपराध क्या है, और मुझे लगता है कि पाशा शब्द का अर्थ है विद्रोह, ईश्वर के शासन के विरुद्ध विद्रोह, और इसका मतलब है उससे विश्वास तोड़ना। जो कोई पाशा करता है वह केवल यहोवा के विरुद्ध विद्रोह या विरोध नहीं करता, बल्कि उसके साथ नाता तोड़ लेता है। और इसलिए वह जो पूछ रहा है वह यह है कि मुझे अपने साथ अपना रिश्ता तोड़ने की अनुमति न दें। मुझे धर्मत्याग से दूर रखो। उनका निष्कर्ष यह है, हे प्रभु, हे मेरी चट्टान और मेरे उद्धारक, मेरे मुंह के ये शब्द मेरे हृदय का ध्यान तेरी दृष्टि में सुखदायक हों। और मेरा सुझाव है कि यह शाही दरबार का प्रोटोकॉल है जो राजा के समक्ष स्वीकृति का पक्ष मांग रहा है कि भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। और उसके मुंह के ये शब्द स्वर्ग की स्तुति में ये शब्द हैं, ईसाई के लिए ये शब्द सृष्टिकर्ता मसीह की स्तुति होंगे। और यह टोरा की प्रशंसा होगी जो आज नई वाचा में व्यक्त की गई है। फिर वह भगवान को मेरा उद्धारकर्ता बताता है। दूसरे शब्दों में यह कानूनवाद नहीं है। वह कानून बनाए रखने के लिए स्वयं प्रयास नहीं कर रहा है। वह पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है और वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे ढीठ लोगों से दूर रखे। और वह भगवान से उसकी चट्टान और उसका मुक्तिदाता बनने के लिए कह रहा है। चट्टान मुक्ति की चट्टान है, सुरक्षा की चट्टान है। और वह वास्तव में भगवान पर निर्भर है जो उसकी रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा। वह बस ऐसा नहीं है, यहाँ भगवान का वचन है और मैं यह करने जा रहा हूँ। वह पहचानता है कि वह नहीं कर सकता, तो वह एक याचिका करता है। और मैं सुझाव देता हूँ कि अंत में उनके शब्दों को अनुग्रह मिला, उनके मुंह के शब्दों को अनुग्रह मिला, क्योंकि उन्हें पवित्र शास्त्र के सिद्धांत में स्वीकार किया गया था और परमेश्वर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। मैं प्रभु की प्रार्थना की अंतिम पंक्ति सुनता रहता हूँ जो एक समस्याग्रस्त नोट है। यह हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता है। खैर, परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता, परंतु वह हमारी परीक्षा लेता है, परंतु हमें बुराई से बचाता है। वे दुष्ट हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यीशु हमें वही प्रार्थना करना सिखा रहे हैं जो डेविड यहाँ प्रार्थना कर रहा है। यह हमें धर्मत्याग करने से रोकता है, हमें शैतान से निपटने से रोकता है जिससे हम अकेले नहीं निपट सकते। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी इससे परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस भजन ने मुझे इसे समझने में मदद की है। हम कह रहे हैं कि हम इसे संभाल नहीं सकते। हमें प्रलोभन से भी दूर रखें, क्योंकि हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं। हमें नेतृत्व न करें, हम इसे संभाल नहीं सकते। मुझे लगता है कि यह बहुत ही विनम्र प्रार्थना है। और हम कहते हैं, तो मैं निर्दोष और बड़े अपराध में निर्दोष ठहरूंगा। परमेश्वर से नाता तोड़ना महान अपराध है। मैं तो यही सोचता हूँ, जो आधुनिक धर्मशास्त्र में धर्मत्याग होगा, हम उसे धर्मत्याग कहते हैं। इसलिए मुझे अपने साथ स्थायी रूप से नाता तोड़ने से रोकें, क्योंकि मैं अपनी शक्ति के तहत इसे जारी नहीं रख सकता, जिसके लिए मुझे भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता है। खैर, मुझे लगता है कि यह एक प्रार्थना है, हाँ, कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे रखना होगा। वह ऐसा करने से रोकने के लिए भगवान पर निर्भर है, क्योंकि वह मानता है कि मैं अपने आप यह नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी भटकने के लिए प्रवृत्त हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि इससे हमें अंतर्दृष्टि मिलती है। मैं उससे भी परेशान रहता था। भगवान हमें प्रलोभन वगैरह में नहीं ले जाते, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं इसे संभालने में सक्षम नहीं हूँ। तो भगवान, मैं खुद को जानता हूँ और मैं कितना पापी हूँ, और मुझे गलत संदर्भ में रखा गया है। मैं महान अपराध के गलत अपराध का दोषी हो सकता हूँ। जब मैंने हाई स्कूल से स्नातक किया, तो मुझे एक उदार कॉलेज में छात्रवृत्ति की पेशकश की गई और मैंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं बहुत छोटा था और मैं डरता था। मैं भजन नहीं जानता था, लेकिन सहज रूप से मुझे डर था कि मैं बड़े अपराध का दोषी हो जाऊंगा क्योंकि मैं प्रोफेसरों को जवाब नहीं दे सका। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र 27 बुद्धि भजन शैली भजन 19 है।